بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصفا أوديو لائبريري کی آواز ہے. ملاحظہ کیجئے اشفاق احمد خان کی تحریر سلسلہ دور نبوت کے بچے سے وفا کا پیکر جو 32 صفحات پر مشتمل ہے. پیش لفظ: عمر میں بڑا ہونے سے کوئی مرتبے میں بڑا نہیں ہو جاتا، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ بڑا عہدہ پانے والا عزت میں بھی بڑا ہو. یہ بھی لازم نہیں کہ مال کثیر کا مالک بزرگی کی صفت بھی رکھتا ہو، اور محض خوبصورتی بھی عظمت کی علامت نہیں ہوتی. مرتبہ، مقام اور بزرگی کے لیے کچھ اور ہی خوبیاں درکار ہوتی ہیں. ان میں سر فہرست تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ یاد ہو تو اس کے الفاظ دیکھیے: کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، اگر ہے تو صرف تقویٰ کے ساتھ. ان صحاب کا رنگ گندمی تھا، ناک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسلام میں بزرگی، عظمت اور عزت شکل و صورت، رنگ و نسل یا کسی قسم کے احساس تفاخر کے بنا پر نہیں ملتی. یہ تو ایمان کی طاقت سے حاصل ہوتی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے بل بوتے پر نصیب ہوتی ہے. اپنی ذاتی خوبیوں کی بنا پر انہیں یہ مقام بلند حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بڑے بڑے صحابہ کرام پر ترجیح دیا کرتے تھے. ان کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت کے زیر سایہ گزرا. اس تربیت نے انہیں محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے. کم عمری ہی میں ان کی خوبیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا تھا. اسی بنا پر محض 19 سال کی عمر میں انہیں امیر لشکر مقرر فرما دیا تھا. جہاد سے محبت نے ان کے دل سے موت کا خوف، اہل و عیال کا پیار اور دنیا کی محبت کو بھلا دیا تھا. میدان جنگ میں ان کی حکمت، مہارت اور شجاعت نے کامیابیاں لا کر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں. وہ میدان جنگ میں عظمیت کی راہوں پر چلتے رہے، لیکن شہادت ان کا نصیب نہ بن سکی. البتہ سعادت کی زندگی ان کا مقدر بن گئی. ان کی عملی زندگی شجاعت سے بھرپور تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں حلم، تحمل اور نرم خوئی کی عادات بھی بہت نمایاں تھیں. جن لوگوں سے ان کا تعلق ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ بہت نرمی، محبت اور نیکی کے ساتھ پیش آتے تھے. وہ اقبال کے اس شعر کی عملی تصویر تھے: ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی خواہشات پر پورا اترتے ہیں، ان کے خوابوں کی عملی تعبیر بنتے ہیں. اس عظیم صحابی نے بھی اپنے والد کی یہ خواہش پوری کی. ان کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک بے مثال قائد بنے، اسلام کے بہادروں میں سے ایک عظیم بہادر ثابت ہو. انہوں نے یہ بن کر دکھایا. وفا کا پیکر ایک عظیم مجاہد صحابی کی داستان ہے، جس میں دلچسپی کا عنصر بھی ہے اور دل پہ چھا جانے والا گہرا اثر بھی. مطالعہ شرط ہے. والسلام، عبد المالک مجاہد. وہ کھیل کود میں مصروف تھا، اسے اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر نہ تھی. بڑے عرصے کے بعد تو اس نے گھومنے پھرنے اور کھیلنے کا موقع ملا تھا. اس کی والدہ اسے ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھتی تھیں، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا. وہ اپنے نانا کے پاس آیا ہوا تھا، اور بچے اپنے ننیہال میں جو آزادی پاتے ہیں وہ کہیں اور کیسے نصیب ہو سکتی ہے. وہ بچہ اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر سے کچھ فاصلے پر کھیل میں مصروف تھا. اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپو کی آواز پڑی. وہ چونک گیا. دور گرد و غبار کے بگولے اٹھ رہے تھے. یہ گرد و غبار رفتہ رفتہ اس کے قریب آتا گیا. گرد چھٹی تو کرخت چہروں والے گھڑ سوار نمودار ہوئے. ان کے گھوڑے طرح طرح کے مال سے لدے ہوئے تھے. وہ بچہ بہت حیران ہوا. تاجر تو ہمیشہ اونٹوں پر اپنا مال تجارت لے کر جاتے تھے، یہ پہلے تاجر تھے جو گھوڑوں پر مال لے جا رہے تھے، لیکن وہ جا کہاں رہے تھے؟ وہ تو اس کے پاس آ کر رک گئے. ان کے چہروں سے خباثت ٹپک رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے چند ایک نیچے اترے اور اس کی طرح بڑھے. بچہ خوف زدہ ہو گیا. ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता या उसके हलक से कोई आवाज़ निकलती, उन्होंने उसे दबोचा और घोड़े पर लाद कर ये जा वो जा। किसी को भी इस सहनिए की खबर ना हो सकी। ये घुड़सवार कबीला बनु कैन बन जसर से ताल्लुक़ रखते थे। उनका काम ही लूट खसोट और मार धाड़ था। कोई उनके हत्थे चढ़ जाता तो उसे गुलामों के बाजार में फरोख्त कर देते। जिस बच्चे को उन्होंने अगवा किया था उसका नाम जैद था। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। जैद को उकाज के बाजार में लाया गया। ये जगह तिजारत के लिए बहुत मशहूर थी। लोगों की अक्सरियत खरीदो फरोख्त के लिए उस बाजार का रुख करती थी। जैद फरोख्त होने के लिए खड़ा था। याद रहे, ये वो दौर था जब इंसान भी जानवरों और मवेशियों की तरह बिकते थे। आज़ाद इंसानों को ग़ुलाम बनाकर उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तारीक बना दी जाती थी। उकास के बाज़ार में जैद हसरत और बेचारगी की तस्वीर बना खड़ा था। उसके मासूमियत से भरे बचपन के दिन उसके दिल को तड़पा रहे थे। उसने तो कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन थे। आरज़ू और ख्वाहिशात की दुनिया में मगन रहने के दिन थे। उन जालिमों ने उसके ख्वाबों की दुनिया ही लूट ली थी। उससे उसके प्यारे रिश्ते छीन लिए थे। शायद अब मैं कभी अपने प्यारों की आवाज़ ना सुन सकूं, जैद ने आंसू बहाते हुए सोचा। ये उसके साथ कैसी अनहोनी हो गई थी। अपने ख़ानदान से दूर जानवरों की तरह बिकाऊ माल बन के खड़ा था। जैद दिल में सोच रहा था कि बिकना तो अब मुकद्दर ही हो गया है। काश कोई ऐसा मालिक मिले जो उससे प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे भी आते हैं जब दिल की ख्वाहिशात आनन फानन पूरी हो जाती हैं। जैद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उकास के बाज़ार में एक शरीफ नफ्स ख़रीदार आ ही गया। जैद की उस पर नज़र पड़ी तो उसकी निगाहों में चमक सी आ गई। हसब नसब से वो वाकई किसी अच्छे कबीले का लगता था। शराफत की रोशनी उसके चेहरे से आयाँ थी। जैद दिल ही दिल में तमन्ना करने लगा कि काश वो उसे ख़रीद ले। वो आदमी चलते चलते इधर उधर चीज़ों का जायज़ा लेते हुए जब जैद के पास पहुंचा तो ठिठक कर रह गया। उस कमसिन बच्चे को देखकर उसे हैरत हुई। न जाने किस गुलशन का ये फूल था, न जाने जालिमों ने किस माँ की गोद को जाड़ा था। जैद की मासूमियत उसे अपनी पूरी तरफ खींच रही थी। उन्हें तमन्ना और ख्वाहिश तो नहीं थी, फिर भी उन्होंने जैद को ख़रीद लिया। यूं जैद के मालिक बन गए। जैद का मालिक कोई मामूली आदमी नहीं था। उसका नाम हकीम बिन हजाम रदी अल्लाह तआला अन्हो था। वही हकीम बिन हजाम रदी अल्लाह तआला अन्हो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के भतीजे थे। हकीम बिन हजाम रदी अल्लाह तआला अन्हो जैद को अपने घर ले आए। जैद के चेहरे से नेकी और शराफत नुमाया थी, इसलिए वह अपने मालिक के चहीते बन गए। एक दफ़ा सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने भतीजे से मिलने के लिए आ गईं। वहाँ उन्होंने जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु के तौर तरीक़े देखे। उम्मुल मुमिनीन सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने सबके सामने उस बच्चे की तारीफ़ की कि ये बच्चा किस कदर उम्दा अखलाक का मालिक है, कितनी खुश असलूबी से काम अंजाम देता है। सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा अभी वहाँ से वापस आ ही दी कि हकीम बिन हजाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जैद को उनकी खिदमत में बतौर तोहफ़ा भेज दिया। और सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने यह तोहफ़ा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। यूँ जैद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए। जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम हारसा बिन शराहिल था। उनका ताल्लुक़ कबीला कल्ब से था। किस्मत ने उन्हें खादिम बनाकर बारगाह नबवी में पहुंचा दिया। वहीं उनकी तरबियत और परवरिश हुई। जैद रदी अल्लाह तआला अन्हो का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना करीबी ताल्लुक़ था कि आपने उनको ये बशारत दी कि जिस तरह तुम दुनिया में मेरे साथ हो, जन्नत में भी मेरे साथ होगे। इस जलील कदर हस्ती जैद बिन हारसा रदी अल्लाह तआला अन्हो के यहाँ उस बेटे ने जन्म लिया जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो जैद बिन हारसा रदी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे का नाम था। उनकी पैदाइश उस वक्त हुई जब दीन हक़ की दावत और तबलीग का काम अपना रास्ता हमवार कर रहा था। जजीरा अरब में शिर्क के बुत पाश पाश हो रहे थे। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने उस घराने में परवरिश पाई जिस ज़माने में अपनी मिसाल आप था। उन वालदैन से तरबियत पाई जिनका शुमार मोमिनीन में होता था। उनसे इस्लामी तालीमात और आला अखलाक सीखे। बचपन ही से कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। उसामा ने अपने वालदैन के हमरा मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। बचपन ही से आपको जिहाद का बहुत शौक़ था। जब उन्होंने सुना कि मुसलमान कुफार से जंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके दिल में भी जज्बा बेदार हो गया। ये बदर के मार्के की तैयारी थी। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने वालिद से इस जंग में शिरकत की इजाज़त तलब की। ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हों ने हैरत से कमसिन बेटे को देखा और फरमाया, तुम तलवार तो उठा नहीं सकते, जिहाद कैसे करोगे? उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने आजी के साथ सर झुकाकर कहा, अगर मैं तलवार उठाना नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं तीर तो चला सकता हूँ। ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हों बोले, मुझे दुश्मनों के घोड़ों और उनकी तलवारों का डर है, यानी उनसे तुम्हें नुकसान ना पहुँच जाए। इसलिए बेटा अभी सब्र करो, जब तुम जवान हो जाओगे फिर जिहाद जैसा अहम फरीज़ा अंजाम दे देना। जंगे अहद के मौके पर उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों की उम्र 11 बरस थी। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जिहाद के लिए निकल रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी तलवार उठाई और मुजाहिदीन से जा मिले। उस दिन का मंजर देखने के काबिल था। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों अपने कद से भी बड़ी तलवार उठाए घूम रहे थे। उनको देखकर हर कोई पूछता कि ये बच्चा कौन है, इसे मैदान जंग में कौन लेकर आया है, ये तो अच्छी तरह से अपनी तलवार भी नहीं उठा सकता, लड़ाई कैसे कर सकता है। लेकिन जब मुजाहिदीन को ये मालूम हुआ कि वो बच्चा खुद ही अपनी मर्जी से दीनी जज्बे के साथ जिहाद में हिस्सा लेने आया है तो वो अश अश कर उठे। लेकिन उनकी कम उम्री को देखते हुए मुजाहिदीन ने उन्हें मैदान जंग से वापस कर दिया। उनको समझाया, अभी दुश्मनों से जिहाद के लिए बहुत से मैदान सजेंगे, जब तुम जिहाद में हिस्सा लेने के काबिल हो जाओगे, तलवार चलाने में महारत हासिल हो जाएगी, नेज़ा फेंकने का फ़न और लड़ाई के दीगर तरीक़ों पर दस्तरस हासिल हो जाएगी, फिर तुम मैदान जंग में आओ तो अच्छा है। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों के अंदर जिहाद का ये ज़ौक़ व शौक़ और तड़प उनके वालिद ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने पैदा की थी। जब वो भी जंग से वापस आते, उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों को तमाम जंगी तफसील से आगाह करते कि किस तरह मुसलमानों ने दौरान जंग बहादुरी दिखाई, मुसलमानों के हैरान कन किरदार के हर पहलू पर रोशनी डालते और जिहाद से उनकी मोहब्बत का तस्करा करते। उस मोहब्बत ने उनके दिल से मौत का खौफ, अहल आयाल का प्यार और दुनिया की मोहब्बत को भुला दिया था। उन वाक़यात से उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों के दिल में जिहाद का जज्बा ज़ोरों पर आ जाता। उन वाक़यात और कसस ने वाकई उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों को जिहाद से शदीद मोहब्बत की तरफ माइल कर दिया था। ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हों की दिली ख्वाहिश थी कि उनका बेटा उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों आने वाले दिनों में एक अजीम मुजाहिद बन जाए, एक बेमिसाल कायद साबित हो और इस्लाम के बहादुरों में से एक बहादुर बने। उनकी कोशिशें रंग लाईं। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों को अल्लाह ताला ने इन सारी खूबियों से नवाजा। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों की रंगत सियाह थी, लेकिन इस्लाम में बुजुर्गी, इज्जत और बुलंदी शक्लो सूरत और रंगो नस्ल की बुनियाद पर नहीं मिलती। ये दीन इस्लाम का करिश्मा है, ईमान की ताकत और तकवा परहेजगारी का नतीजा है, जिसने एक ऐसे आदमी को अजमत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया जिसका ताल्लुक ना तो किसी बहुत बड़े ख़ानदान से था और ना वजाहत और खूबसूरती का पैकर था। बेशक ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हों की रंगत सफ़ेद थी, लेकिन उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों का रंग उन पर नहीं गया था। फिर भी ज़ाती खूबियों की बिना पर वो एक बुलंद मकाम पा गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरैश के बड़े बड़े लोगों का अमीर मुकर्रर कर दिया था और बड़े बड़े सहाबा कराम और साहिब इल्म उनके झंडे तले रहे। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हों दुबले पतले जिस्म के मालिक लेकिन बहुत होशियार और बहादुर सहाबी थे। अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवरिश की और उनसे इंतहाई मोहब्बत की। हशाम बिन उरवा रहमतुल्लाह अलैहि अपने वालिद से रिवायत बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से हज के मौके पर तवाफ़ में ताखीर कर दी। उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ार करते रहे। जब वो पहुंचे तो लोगों ने हैरत से कहा कि हम सिर्फ इसकी वजह से यहाँ इतनी देर इंतज़ार करते रहे, ये बात कहने वाले यमन के लोग थे, यही वो लोग थे जो ईमान की कमज़ोरी की बिना पर सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के आगाज़ में मुर्तिद हो गए थे। इस हदीस से ये बात वाज़े होती है कि बेशक उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु का रंग सिया था, उनकी नाक बैठी हुई थी, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना करीब थे ये तो हम जान ही चुके हैं। वो वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन खादिम, उम्दा रफ़ीक़ और काबिल रश्क साथी थे। ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को इस राह पर चलाया जिस पर चलकर उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो जाए, और वाकई उन्हें ये एज़ाज़ नसीब हुआ। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ते और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करते, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। उमर बिन अबी सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मुझे उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बताया, एक दफ़ा सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा आपको महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पूछने का मकसद ये था कि मर्दों में कौन ज़्यादा महबूब है। फरमाया, जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और जिस पर मैंने इनाम किया है, यानी उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, इनके बाद आपको ज़्यादा महबूब कौन है? फरमाया, आप ए अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। शाबी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं, किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो सामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से नफ़रत करे जिसने अल्लाह के रसूल का ये फरमान सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो सामा से मोहब्बत करे। इसके अलावा सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बनू मखज़ूम की औरत की चोरी के हवाले से फरमाया, जब मखज़ूमिया औरत ने चोरी की तो लोगों ने कहा, कौन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करने की ताकत रखता है? उन्हें ख्याल आया कि इसके लायक सिर्फ़ उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ही हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के महबूब हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, एक मरतबा उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बनाया गया, लोगों ने आपकी इमारत के मुतालिक बातें की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह आज इनकी इमारत पर एतराज़ किया गया है, इसी तरह इनके बाप की इमारत पर भी एतराज़ किया गया था। अल्लाह की कसम, वो इमारत के लायक था, वो मुझे सबसे प्यारा था, और इसके बाद इनका ये बेटा उसामा भी सबसे प्यारा है। फ़तेह मक्का के तारीख़ साज मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए तो आपके साथ 10,000 मुसलमान थे। इसी मक्के से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर हिजरत की थी। मक्का छोड़ते वक्त उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा था, ऐ मक्का, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे हम वतन मुझे मजबूर कर रहे हैं। आज इसी मक्के में फ़ातह बनकर दाखिल हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद खच्चर पर सवार थे, और इस खच्चर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक गंदुमी रंगत का नौजवान बैठा था। लोगों की आंखों में हैरत और सवाल थे कि ये कौन शख्स है जो इतने तारीखी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा है और जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा एज़ाज़ बख्शा है। पूछने पर मालूम हुआ कि वो उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए ताकि 2 रकात नफिल अदा करें, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के अलावा कोई बैतुल्ला में दाखिल नहीं हुआ। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह का खौफ रखने वाले, ज़बान की हिफाजत करने वाले और सच्चाई के पैकर सहाबी रसूल थे। आपके साथी सहाबा ने आपके तकवा और परहेजगारी का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक ग़ुलाम बयान करता है, उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो जब अपने माल व असबाब की तरह सवार होकर वादिय कुरई जाते तो रास्ते में सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते। मैंने कहा, आप सफ़र में भी सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, हालांकि आप उस वक्त बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं और कमज़ोर भी हो गए हैं। मेरी बात का जवाब देते हुए उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फरमान है कि इन 2 दिनों में लोगों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। अगर कभी इनसे गलती सरजद हो जाती तो इस पर इतना पशेमान होते थे कि बार बार तौबा करते और कोशिश करते कि आइंदा वो गलती कभी ना हो। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, मुझे एक अंसारी को एक दुश्मन मिल गया। जब हम तलवार से उस पर हमला करने लगे तो उसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, लेकिन हमने उसकी एक ना सुनी और उसे कत्ल कर दिया। जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा मामला पेश खिदमत किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उसामा, तुमने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? तुमने उसे कत्ल कर दिया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु का इकरार किया था। हमने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो डरते हुए कलमा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा, उसके बारे में क्या ख्याल है जो ला इलाहा इल्लल्लाहु का इकरार कर लेता है? आप बार बार यही कहते रहे, हत्ता कि मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मैं आज से पहले मुसलमान ही ना हुआ होता। आज मेरे इस्लाम का पहला दिन होता और मैंने उसको कत्ल ना किया होता। फिर मैंने कहा, मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि मैं किसी ऐसे शख्स को कभी कत्ल नहीं करूँगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु का इकरार कर लिया हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद ए उसामा। इस जुमले का मतलब ये था कि मेरे सामने मेरी मौजूदगी में तू ये इकरार कर रहे हो, क्या मेरे बाद भी इस अहद को निभाओगे? मैंने अर्ज़ किया, आपके बाद भी, यानी ये महज वक्ती या दिखावे का इकरार नहीं, ये इकरार और वादा आज ही नहीं बल्कि हमेशा पेश नज़र रहेगा। वाकई उसामा रदील्ला तआला अन्हों ने अपना अहद सारी ज़िंदगी निभाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसामा रदील्ला तआला अन्हों से मोहब्बत ने सहाबा कराम के दिलों में भी आपकी मोहब्बत पैदा कर दी थी। वो भी आपकी इज्जत करते, आपको एहतराम से नवाजते, हत्ता कि अक्सर आपको प्यारे का प्यारा बेटा कहकर पुकारते। इब्ने उमर रदील्ला तआला अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, उसामा रदील्ला तआला अन्हो तमाम लोगों से मुझे ज़्यादा प्यारा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे नेक लोगों में से हो, उसके साथ भलाई की नसीहत करना। जब सैदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हों ने लोगों के लिए वज़ाइफ़ मुकर्रर किए तो उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हों के लिए 5,000 वजीफ़ा मुकर्रर किया और अपने बेटे अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हों के लिए 2,000 वजीफ़ा मुकर्रर किया। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हों कहने लगे, अब्बा जान, आपने उसामा को मुझ पर फौकियत दी है, हालांकि मैं इन जंगों में शरीक हुआ हूँ जिनमें उसामा शरीक नहीं हुए। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हों फरमाने लगे, बेटा, उसामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ तुझसे ज़्यादा महबूब थे और उसका बाप ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हों अल्लाह के रसूल के नज़दीक तेरे बाप से ज़्यादा महबूब थे। अब्दुल्ला बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो जब उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो को देख लेते तो इनसे कहते, ए अमीर, अस्सलाम वालेकुम। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो कहते, ए अमीरुल मुमिनीन, अल्लाह आपको माफ़ करे, आप मुझे इस तरह पुकारते हैं, यानी अमीर कहकर मुखातिब होते हैं, हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो जवाब में फरमाते, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा इस नाम ही से आप पुकारूँगा, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हुए उस वक्त आप मेरे अमीर थे, यानी लश्कर की सरदारी के ओहदे पर फ़ाइज़ थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को गुसासाना के बादशाह की तरफ ख़त देकर रवाना किया। मौता के मकाम पर इनकी मुलाकात गुसासाना के बादशाह के गवर्नर शर हबील बिन उमरों से हुई। वो जनूबी शाम के शहरों का हाकिम था। उसने हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हों से पूछा, किधर का इरादा है? उन्होंने जवाब दिया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची हूँ, गुसासाना के बादशाह से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त उसको पहुँचाना है। शर हबील बिन उमरों ने ये सुनते ही हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत की इत्तला मिलते ही 3,000 मुजाहिदीन का लश्कर तैयार किया, जिसकी क़यादत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द हुई। मौता के मकाम पर खौफनाक मारका हुआ। ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह तआला अन्हु उस मारके में शहीद हुए। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा। ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद लश्कर की क़यादत जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हु ने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा झंडे को बुलंद करते करते उनके दोनों बाजू कट गए, लेकिन जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा अपनी शहादत तक गिरने नहीं दिया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा पकड़ लिया। इनकी दिलेराना शहादत के बाद ये एजाज़ खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आया, जिन्होंने अपने तजुर्बे, जंगी महारत और कायदाना सलाहियतों से दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु पर इस जंग ने गहरा असर डाला। ये मार्का उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर लड़ा था। उनकी आंखों के सामने दुश्मन की तलवारें इनके बाप पर बरसी थीं। इन्हें बाप की शहादत का गम तो था, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हुई है। शहीद तो ज़िंदा होते हैं और वो अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं। फिर इस जंग में सिर्फ वही शहीद नहीं हुए थे, बेशुमार दूसरे सहाबा कराम ने भी रुतबा शहादत पाया था। अलबत्ता उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह तय कर लिया कि जब कभी मौका मिला वो रूमियों से इसका बदला ज़रूर लेंगे। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हवाज़न सकीफ़ और इनके क़ुर्ब व जवार के कबाइल ख़ास तौर पर मालिक बिन औफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कबीलों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया। तकरीबन 12,000 मुजाहिदीन का लश्कर इन कबाइल की सरकूबी के लिए रवाना हुआ। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस लश्कर में सबसे आगे थे। इनकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। मैदान जंग में शुजात दिखाने की यही उम्र थी। इस दिन का उनको बड़े अरसे से इंतज़ार था, क्योंकि माजी में कम सिन होने की वजह से उनको मैदान जंग से वापस कर दिया जाता था, लेकिन अब वो अपने शबाब को पहुंच चुके थे। माजी में वो जंगी चालों और महारत से आना आशना थे, लेकिन अब वो जंगी चालों और तजर्बे में किसी से पीछे नहीं थे। वो बेहतरीन शहसवार थे, तलवारबाजी के फ़न में माहिर थे और नेज़ा फेंकने में भी कमाल हासिल कर चुके थे। ये मार्का जिसमें वो शरीक थे गज़वा हुनैन था। जंग शुरू हुई, मुसलमानों के दिल में अपनी तैयारी और ज़्यादा तादाद की बिना पर फतह का यकीन गालिब आ चुका था। हत्ता के बाज़ ने यह भी कह दिया था कि आज कोई हम पे गालिब नहीं आ सकता, लेकिन जंग के आगाज़ ही में दुश्मन ने मुसलमानों को पीछे की तरफ धकेल दिया। पीछे हटने वाले मुसलमानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लोगों किधर जा रहे हो? मेरी तरफ वापस आओ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। मैं कोई झूठा नबी नहीं हूँ। मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से हूँ। यह बहुत नाजुक और मुश्किल वक्त था। मुसलमानों पर आजमाइश आ चुकी थी। मुसलमान मुजाहिद पसपा हो रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में चंद सहाबा कराम ने यह अहद कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं हटेंगे। उन लोगों में उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा भी थे। दीगर सहाबा कराम में सैदना अबू बकर, सैदना उमर फारूक, सैदना अली बिन अबी तालिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू सुफियान बिन हारिस, फजल बिन अब्बास, रबिया बिन हारिस और ऐमन बिन उबैद रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमई शामिल थे। ये जंग उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक इम्तहान थी। वो बहुत साबित कदमी के साथ डटे रहे, आगे बढ़ बढ़ कर दिलेरी से लड़ते रहे। उनकी शहसवारी इस दिन काबिले दीद थी। किसी ने भी इनके कदम पीछे हटते नहीं देखे। ये जंग उनकी शुजात और बहादुरी का मुंह बोलता सबूत थी, और इस अमर का इजहार भी कि एक अजीम कायद जन्म ले चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे मौता में शहीद होने वालों को अभी तक नहीं भूले थे। बस मौके के मुंतजर थे कि कब अल्लाह ताला कोई मुनासिब वक्त लाए, इस्लामी लश्कर तैयार हो और जंग का मैदान सजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब कभी जंग पर जाने का इरादा फरमाते तो ना तो जंग का यानी हदफ का तायुन फरमाते और ना ये जाहिर करते कि किस तरफ का इरादा है। लेकिन इस बार गजवे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ऐलान फरमा दिया कि इस बार किधर और किस से जिहाद का इरादा है। तमाम मुसलमानों ने जिहाद की पुकार पर लब्बैक कहा। इनमें उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा भी शामिल थे। बहादुर बाप की शहादत का मंजर एक पल के लिए भी इनकी निगाहों से जुदा नहीं होता था। इनके बाप पर तलवारें बरस रही थीं और वो बड़ी हुई जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। अभी उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु मार्के में शिरकत की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तलाश में एक आदमी को भेजा। पैगाम मिलते ही उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बिठा लिया और कुछ वाज़ और नसीहत के कलमात कहे और फरमाया, अपने बाप के शहीद होने की जगह की तरफ चलो, मैंने तुम्हें इस लश्कर का अमीर बना दिया है। उस वक्त उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 19 साल थी। जब कुछ सहाबा कराम को उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु की इमारत यानी सरदारी का पता चला तो वो हैरत से एक दूसरे से पूछने लगे, उस छोटे जवान को क्यों अमीर मुकर्रर किया गया है? हालांकि सहाबा कराम में वो लोग भी मौजूद हैं जो इनसे बढ़कर अक्लमंद और दाना हैं। इन्हें दुश्मनों से लड़ने का ज़्यादा तजर्बा है, जंगी चालों में उनकी महारत किसी से ढकी छुपी नहीं है, जैसे खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हों हैं। इनमें वो सहाबा भी मौजूद हैं जो गज़वा बदर, अहद और हुनैन में शरीक हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बातें सुनी जो वो उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हों की इमारत के बारे में कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाल में मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मिंबर पर चढ़े और अल्लाह की हम्द सना के बाद फरमाया, ऐ लोगों, मैंने तुम्हारी मुख्तलिफ़ बातें सुनी हैं जो तुमने उसामा के मुतालिक कही हैं, हालांकि इसको अमीर मैंने मुकर्रर किया है। तुमने मेरे बनाए हुए अमीर पर एतराज़ किया, इससे पहले तुमने इसके बाप की इमारत पर एतराज़ किया था। अल्लाह की कसम, वो भी इमारत के मुस्तहिक थे और इसका बेटा उसामा भी इमारत का हकदार है। अगरचा और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो मुझे लोगों में सबसे ज़्यादा प्यारा है। वो दोनों सबसे प्यारा है, दोनों बाप बेटा नेकी के बादल हैं। इसके साथ खैर का मामला करो, वो तुम्हारे बेहतरीन लोगों में से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमाने के बाद घर वापस आ गए। इन दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के यहाँ था। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु जर्फ नामी मकाम पर पहुँच गए थे। उन्हें खबर मिली कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ शदीद हो गया है। चुनाचा वो दीगर मुसलमानों के साथ वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ की हालत में भी यही फरमा रहे थे, उसामा के लश्कर को रवाना करो। इतवार के दिन वफात से कबल उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और करीब होकर अपना सर झुका दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बोसा दिया, लेकिन कोई बात ना की, बल्कि आसमान की तरफ हाथ बुलंद करते और फिर उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु पर रख देते। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जान गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा लश्कर की तरफ वापस आ गए। फिर सोमवार के दिन उन्होंने दोबारा हाज़िरी दी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत काफ़ी बेहतर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर जहाद के लिए रवाना हो जाओ। चुनाचा उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अलविदा कहते हुए लश्कर का रुख किया। अभी लश्कर जाने की तैयारी में था कि अचानक उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा उम्मे ईमन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ से एक एलची आ पहुँचा और पैगाम दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। चुनाचा उसामा सैदना उमर और अबू उबैदा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा वापस लौटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई अजल को लब्बैक कह चुके थे। बाकी लोगों ने भी मदीने का रुख कर लिया। ये पीर का दिन था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा अव्वल बने, लेकिन इनके खलीफा बनने के फौरन बाद हालात बहुत बिगड़ गए। तरह तरह के फितने सर उठाने लगे। मदीने के इर्द गिर्द के बेशुमार कबाइल मुर्तिद हो गए यानी दीन से फिर गए। कई लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया। उस नाजुक दौर में सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा दिया कि अभी उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर को रवाना ना किया जाए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मशवरे को बड़ी सख्ती के साथ ये कहते हुए रद्द कर दिया, अल्लाह की कसम जो गिरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांध गए हैं, मैं इसको कभी नहीं खोलूँगा, ख्वाह हालात जिस कदर भी बुरे हों, अगरचा परिंदे हमें नोच लें और दरिंदे मदीने के इर्द गिर्द जमा हो जाएं, मैं ज़रूर उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो के लश्कर को रवाना करूँगा। आखिरकार लश्कर को रवाना किया गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो खुद पैदल साथ चल पड़े। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो घोड़े पर सवार थे और अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हो पाप पयादा इनके साथ दौड़े चले जा रहे थे। ये इनकी आजी और इनके सारी थी और उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो से इनकी मोहब्बत का सबूत था। लेकिन उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो को ये बात अच्छी ना लगी कि वो खुद तो सवार हों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन साथी पैदल चलें। उन्होंने गुजारिश की, अल्लाह की कसम आप सवार हो जाएं वरना मैं नीचे आ जाऊंगा, आप सवार नहीं होंगे तो मैं भी सवार नहीं होऊंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो बार बार फरमाते रहे, अल्लाह की कसम आप ना उतरें, मैं चाहता हूँ कि मेरे पांव भी अल्लाह की राह में कुछ देर के लिए गुबार आलूद हो जाएं। फिर उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ देखते हुए कहने लगे, अगर आप मेरी मदद उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो के साथ फरमा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इन्हें आप मदीने में मेरे साथ रहने दें। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो ने सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो को मदीना मुनव्वरा में रहने की इजाज़त दे दी। ये सब उस दीन की बदौलत था। अमीरुल मुमिनीन पैदल चल रहे थे और खादिम अपनी सवारी पर था। ये बात यकीनन इनके जहन में थी कि ये चीज़ें इज्जत को कम नहीं करती बल्कि इज्जत को बढ़ाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और मुसलमानों के हाकिम उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो से सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो को मदीने में छोड़ने और रुकने की इजाज़त तलब कर रहे हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के बेटे थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो अगर चाहते तो हाकिम की हैसियत से इन्हें हुक्म दे सकते थे, लेकिन ये कमसिन नौजवान सिया रंग गुलाम का बेटा अब लश्कर का अमीर है। किसी को जुर्रत नहीं जो इनके हुक्म की नाफरमानी कर सके। सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो व अजीम सहाबी हैं जिनसे शैतान भी डरता था, लेकिन आज वो भी इस अमीर के मातहत हो गए थे जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था। अगर उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो इजाज़त देने से इनकार कर देते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा यही कहते कि हमने सुना और अताअत की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो को वसीयत की कि ये बात याद रखना कि असल कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला की ताबेदारी में है। यूँ उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो दुआओं के साए में रुखसत हुए। मैदान जंग में इनके जज्बों की असल आजमाइश हुई। हिकमत, महारत और शुजात का हर पहलू निखर कर सामने आया। ये खूनी मार्का था, हर तरफ आग और खून नजर आता था। मुसलमानों की तलवारें दुश्मनों पर बिजलियों की तरह चमक रही थीं, नेज़े जिस्मों के पार हुए जाते थे। ईमान के जज्बों से लड़ी जाने वाली जंग में मुसलमान बिलाखिर फतह से हमकिनार हुए। दुश्मनों का सालार मैदान छोड़कर भाग गया, उसकी बेशुमार सिपा मौत के घाट उतरी और कितने ही लोग कैद हुए। बेतहाशा माल गनीमत हाथ आया। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो कसीर माल गनीमत लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीने के लोग इनके इस्तकबाल के लिए निकले। अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो सबसे आगे थे। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे आगे आगे बुरैदा बिन हुसैब रदी अल्लाह तआला अन्हो झंडा उठाए हुए थे। सबने मस्जिद नबी में 2 रकात शुक्राने के नवाफिल पढ़े और फिर घरों का रुख किया। उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो की कामयाब लश्कर कशी से कितने ही फितनों का सद्देबाब हो गया। कुछ तो खौफजदा होकर तायब हो गए और कुछ ने लड़कर अपने आप को बर्बादी की राहों में धकेल दिया। बागी कबाइल नाफरमानी से बाज आ गए, वो अमीरुल मुमिनीन की अतात पर आमादा हो गए। शाम में फतह हासिल करके उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी शुजात और फहम व फरासत को मनवा लिया। उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दिल के नहायत नर्म और रिश्तों के एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले थे। इनकी अमली ज़िंदगी जहाँ शुजात से भरपूर थी, वहाँ वो खुद से ताल्लुक़ रखने वालों से भरपूर नेकी करते थे। अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा नेकी से पेश आते थे। हमेशा उनकी फरमाबरदारी की। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत सुन रखी थी, वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना और बिलखुसूस माँ का ख्याल रखना, हर हालत में इनके साथ अच्छा सलूक करना। मोहम्मद बिन सैरियन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, उसामा रदिल्लाहु तआला अन्हो के हाँ खजूर का एक दरख्त था जिसकी कीमत तकरीबन 1,000 दरहम थी। आपने इसको काटा और इसमें से गूदा निकाल कर अपनी वालदा मोहतरमा को खिलाया। किसी ने आपसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? हालांकि आप जानते हैं कि खजूर के इस दरख्त की कीमत 1,000 दरहम तक पहुंच चुकी है। उसामा रदिल्लाहु तआला अन्हो ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे इसके मुतालिक कहा था, अगर मुझ में ताकत हुई तो मेरी माँ मुझसे जो मांगेगी मैं इसे ज़रूर ला कर दूँगा। उसामा रदिल्लाहु तआला अन्हो ने मुजाहिदाना ज़िंदगी बसर की। बचपन से जिहाद का जो पौधा उनके दिल में परवान चढ़ रहा था, उसने उन्हें अजमियत की राहें दिखाई। जिहाद की मनादी सुनते ही अपनी तलवार पकड़ते, जर्रा पहनते और घोड़े पर सवार होकर हक की दावत पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते। दिल में शहादत की तमन्ना बसाए हुए वो जंगों में शिरकत करते। शहादत की मौत तो उन्हें नसीब ना हुई, लेकिन शहादत की ज़िंदगी ज़रूर उनका मुकद्दर बनी। 75 साल की उम्र में आपने मदीना मुनव्वरा में वफात पाई। तुलुए आफ्ताब से कबल इन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आपकी बुजुर्गी, तकवा और अजमियत तारीख़ के औराक में हमेशा के लिए नक्श है। वो एक गुलाम के बेटे थे, लेकिन उनकी खुशबख्ती का क्या कहना कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन रहबर मिले और उसके लिए मोहब्बत, शफ़क़त और तरबियत के ख़जानों के मुंह खुल गए और तरबियत का ये दौर इस सालारी पर ख़त्म हुआ। वफा का पैकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहदे वफा निभाने वाले एक बच्चे की कहानी, जिसको रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी मिली। यूँ दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उसके दामन में आन गिरी। उन्होंने अपनी शुजात, हिकमत और फहम व फरासत से काराए नुमाया सर अंजाम दिए और अपने रहबर के इंतखाब को दुरुस्त साबित कर दिया। यहाँ पार्ट नंबर 9 मुकम्मल हुआ। आगे की तफसील अगले पार्ट में जानिए। जजाकल्ला।